देखो अनुभव, वहाँ हमें 2-3 घंटा रहना पड़ा। वो जो पुजारी आदि थे वहाँ के, उस दिन वहाँ देवियों की स्थापना कर रहे थे मूर्तियों की, तो मूर्तियां लेने गए हुए थे और वो बैंड बाजे के सहित ला रहे थे उन्हें। वो हमें सुन भी रहा था, 1 किलोमीटर से ला रहे, लेकिन 1 किलोमीटर से आने में घंटा लगेगा ना उन्हें। तो मैंने देखा हम वहां बैठने की भी जगह नहीं थी, हम घूमते रहे 3 घंटे घूमते रहे, मुझे टांगों में दर्द नहीं हुआ। मैं देखा यहाँ हीलिंग एनर्जी तो है। फिर आए तो वो बेचारे बड़े भावना रखते थे हम लोगों में, उन्होंने स्थापना हम लोगों के द्वारा ही कराई। बहुत सारी मूर्तियां थी, लाइन में लगा दी और हम सब ने ही वो भक्ति का काम पूरा किया। उनपे फूल चढ़ाना, वो मंत्र वो जप रहे थे, पानी चढ़ाना, जो भी करना होता है वो हम सब ने किया। तो हमने देखा वहाँ 5 हनुमान के मंदिर थे, उस 1-2 किलोमीटर की सड़क पर। वो चारों बंद पड़े थे अब, का यहाँ कोई नहीं जाता। अब वो हनुमान प्रसिद्ध है, उसका नाम भी कुछ रखा हुआ है। क्यों है ये सब? यहाँ का है ना, कोई देवी कोई देवता दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कोई अपनी पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ये सब यहाँ की यादगारें हैं। तो हमें बाबा उस समय के लिए तैयार करना चाहता है जब इस संसार को हमारी बहुत जरूरत होगी, और वो समय दूर नहीं है, मुश्किल से 5 साल। जब इस संसार को हमारे वाइब्रेशंस की, जो हम बाबा से ले रहे हैं, वो देने की बहुत जरूरत होगी। न दवाइयां काम करेंगी, न संबंधी काम आएंगे, कुछ नहीं काम आएगा। सभी ध्यान दें, जो भी किसी भी मोह ममता में अपने परिवारों में अटके हुए हैं, उन्हें आभास हो जाएगा कि जिनके लिए तुम अटके हुए हो वो तो तुम्हारे हैं ही नहीं। कैसा लगता है माताओं को ये सुन के? बड़ा खराब है ना, खराब बात ये। देखो महाभारत का एक वृतांत आप सुने, अर्जुन की मृत्यु हो गई चक्रव्यूह में, वो अभिमन्यु की। अर्जुन को बहुत शोक हुआ, एकदम विलाप करने लगा। श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पे हाथ रख दिया और उसको ध्यान में भेज दिया। उसने देखा ऊपर जाके स्वर्ग में एक झूले पर अभिमन्यु झूल रहा है। अर्जुन बहुत तेजी से बिना कुछ सोचे, अरे अभिमन्यु तुम कहाँ हो, लिपट गया जाके। अभिमन्यु ने कहा, कौन आ गया, हटाया उसे, तुम कौन? कहा, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। कौन अर्जुन? कौन अर्जुन? मेरा कोई पिता नहीं अर्जुन। अभी अर्जुन को समझ में आ गया ना, उसका मोह नष्ट हुआ, वापिस उतर गया ध्यान से। ये सबका मोह नष्ट कराएगा बाबा अंत में, या तो ज्ञान युक्त होके कोई कर ले, नहीं तो बता देगा जिनको तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे हैं कहाँ। अब तो वो तुम्हारे बच्चे हैं, पिछले जन्म में तुम उनके बच्चे थे, कहीं और थे, कहीं और थे, ये तो खेल चल रहा है। तो बाबा हम सभी को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम परसों की एक बात पर चर्चा करेंगे, लास्ट में रिजल्ट आउट किन 3 धारणाओं के आधार पर होगी। बोलो परसों जरा पहुंचो, अव्यक्त मुरली, सवेरे की अव्यक्त मुरली। और पहला, कितनों को योग्य बनाया, दूसरा कितनों को सुख दिया, और तीसरा कितने शक्तिशाली होकर रहे। 4 सब्जेक्ट की भी 4 धारणाएं थी, ज्ञानी माना, समझदार जो कहीं भी धोखा न खाए, लौकिक अलौकिक, मनुष्यों से काम धंधों में धोखा न खाए। धोखा बहुत हो रहा है ना आजकल, लोग बहका लेते हैं। योगी माना, क्लीन और क्लियर बुद्धि, धारणा वाले डबल लाइट, मेले में भी और झमेले में भी। बाबा के शब्द बहुत सुंदर है ना, कितने भी झंझट हो लाइट हल्के। और सेवाधारी निमित्त और निर्माण, कोई अहंकार नहीं। सेवाओं में अगर अभिमान है, निमित्त भाव नहीं है, तो ये सबसे बड़ा क्या बोलो, क्या है ये सबसे बड़ा? अज्ञान है। क्या आत्माओं को ये पता ही नहीं कि सारे काम ऊपर से हो रहे हैं? काम बाबा का, नाम हमारा, वो हमारा नाम करा देता है, हमें आगे रख देता है। आजकल की साकार मुरली में भी था ये कुछ ऐसा ही, मुझे एकदम वो सुनी मैंने बात, बाबा कह रहा है मैं बच्चों का नाम कराने के लिए बच्चों को आगे कर देता हूँ। भक्ति में भी देवी देवताओं के द्वारा, हनुमान के द्वारा, गणेश के द्वारा, माताओं के द्वारा, दुर्गा सरस्वती काली, सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, पर कर्ता कौन है? कर्ता बाबा, नाम इनका। यही प्रथा संगम की है, कर्ता वो है, नाम हमारा हो रहा है। जो ये बात भूल जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, वो अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। जहाँ अभिमान है वहाँ जीवन में दिव्यता नहीं आती। ये सब जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो सफलता हो, चाहे हमें बहुत मान मिल रहा हो, चाहे हमारे पास ज्ञान बहुत अच्छा हो, चाहे हम बहुत अच्छे योगी क्यों न हो, चाहे हम बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो, ये बिना बाबा की मदद के नहीं होता। कोई भी योगी भी स्वयं बन ही नहीं सकता जब तक प्रभु कृपा न हो। ठीक है या नहीं? ये बिल्कुल सत्य है, मेरा अपना अनुभव है। जब मैं यहाँ आया 68, योग का बहुत पुरुषार्थ किया, नहीं होता था कुछ, अप डाउन, ऊपर नीचे, कभी बहुत अच्छा, कभी एकदम जीरो। जब बाबा की कृपा दृष्टि हुई तो फटाफट हो गया। इसलिए मैं अपने अनुभवों से ही कहता हूँ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी बिना प्रभु कृपा के नहीं होता। और उसकी कृपा, उसका प्यार, उसकी दुआएं जीतने के लिए क्या करना होता है? मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? उसे राजी करना है। कैसे राजी हो जाएगा वो हमसे? और सच्ची दिल से, उसकी आज्ञाओं पे चल के, और उसके यज्ञ की सच्चे दिल से सेवा करके। ये भी बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, भगवान को राजी करने का। और भगवान राजी होकर जब वरदान दे दे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ शक्तियां दे दे, तो हमें अब यहाँ है मनुष्य की दिव्यता, उसकी श्रेष्ठता की पहचान। दिया सब उसने, लेकिन मनुष्य को उन्हें विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके विश्व कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। जो मनुष्य उन्हें नम्रता पूर्वक स्वीकार न करके अभिमान में आकर उनका मिसयूज करके दूसरों को कष्ट देता है, क्या होगा? उसकी शक्तियां बाबा वापस ले लेता है, या उसका बढ़ा हुआ पाप ही उसे नष्ट करने के निमित्त बन जाता है। तो हम इस बात पे ध्यान दें, हमने कितनों को योग्य बनाया। बाबा ने उदाहरण दिया, किसी के पास 30 सेंटर हो लेकिन 15 हिल रहे हो, तो सेंटर के इंचार्ज भी हिलेंगे ना। जब वृक्ष हिलता है तो नीचे का भी तो हिलने लगता है ना, टूट भी जाता है। तो बाबा के पास हमने देखा सूक्ष्मता से, बाबा के पास संपूर्ण महत्व है उन आत्माओं का, जिनका चित्त निर्मल है, जिनका मन सद्भावनाओं से भरा हुआ है, जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, जो परोपकारी हैं, जिनके पास ऑनेस्टी है, सच्चाई है, जो बहुत अच्छी पवित्र आत्माएं हैं, जो निर्मल हैं, निरंकारी हैं, बाकी उसके पास किसी का महत्व नहीं है। किसने कितने भाषण किए, किसने कितना धन लगाया, किसने कितने सेंटर खोले, ये तो फाइनली पता चलेगा कि ये तो सब बाबा ही कर रहा था, हम नहीं। धन अगर बाबा चाहे, क्या वो हमारे पास धन की बरसात नहीं करा सकता? हीरो की बरसात करा सकता है वो, और वो करा के जाएगा। जब खेल पूरा होगा और बाबा इस संसार से वापस जाएगा, इस धरा पर हीरे सोने मोती माणिक इन सब के बरसात कराकर ही तो जाएगा। भरपूर होगी धरती, हमारा वो गीत भी बना है ना, भारत फिर भरपूर बनेगा। वो सचमुच है, उसमें तो बहुत कम वर्णन है, इतना अथाह होगा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि हम कितनों को योग्य बनाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं हम कितनों को संदेश देते हैं। बाबा ने काम दिया हुआ ना, सबको बाबा का संदेश दो, फिर बाबा का ज्ञान दो, लेकिन इससे भी आगे योग्य बनाना, दूसरों को मदद करना, गुणवान बनाना, योग सिखाना, योग में जो कठिनाई है उनको दूर करके उनका योग लगे ऐसा उनको करना, इसकी बहुत जरूरत है। योग्य बनाए हम, शक्तिशाली बनाए आत्माओं को। दूसरा है कितनों को सुख दिया, बहुत बड़ी बात है ये भी। मुझे बाबा की एक बहुत गुह्य बात याद आई, 77 की मुरली से है अव्यक्त। तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता, समय लगता है ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उन्हें नष्ट करने में। बहुत गुह्य बात है, पढ़ सकते हैं आप 77 की, मुझे डेट याद नहीं, किसी मुरली में है ये। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारी वाणी सुखदायी नहीं है, अगर हमारा व्यवहार सुंदर नहीं है, तो विकर्म बनता जाएगा। पीछे बाबा ने कहा 5 विकार और दूसरे 5 तत्व, इनका आकर्षण, ये सूक्ष्म विकर्म बनता है, बोझ होता है आत्मा पे, आत्मा उड़ नहीं सकती। 5 तत्व माना देह का आकर्षण, किसी भी विकार का आकर्षण, लोभ का आकर्षण, जीव का आकर्षण, और इस मुरली में परसों बहुत अच्छी थी सूक्ष्म गति, इच्छाएं, मन की इच्छा, सूक्ष्म इच्छाएं। हमें भी ये चांस मिले, हम योग्य हैं। देखिए मनुष्य को ये संकल्प आना बड़ा नेचुरल है ना, जो योग्य होता है वो सोचता है हमें भी ये चांस मिले, हम भी ये काम करें। ये संकल्प भी ठीक है, लेकिन ये संकल्प अगर आत्मा को परेशान कर दे, ये संकल्प अगर आत्मा को व्यर्थ संकल्पों में बहा ले जाए, उसकी शक्तियों को नष्ट करने लगे, तो ये संकल्प बड़ा नुकसानकारी हो गया। हम इस पे ध्यान दें तो बिल्कुल निष्काम हो जाएं। याद रखेंगे जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, संपूर्णता की समीपता की निशानी है बाबा के शब्दों में निष्काम भाव, निर्दोष दृष्टि। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं, हम कार्य करें, सेवा करें, घरों में भी माताएं ध्यान दें, बच्चों की पालना करें निष्काम भाव से। ये संकल्प ही ना हो कि हम इनकी पालना कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ऐसा करें, हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं ये हमारी आज्ञा माने, इससे भी ऊपर उठ जाएं, बिल्कुल निष्काम हम अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा को देखें, मुरलियों में आता रहता है, मेरा तो शिव बाबा कहते हैं ना, मेरा तो फोटो भी नहीं निकलता, पैर छूने क्यों, बिल्कुल सख्त मनाई, फूल देने को भी बाबा पसंद नहीं करते थे। बाबा ब्रह्मा जो सबसे महान आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड है ना, इस धरती का भगवान ही माना गया उसको, श्री कृष्ण विष्णु के रूप में, उसमें बिल्कुल कोई कामना नहीं, निष्काम। बच्चों में भी कुछ गड़बड़ हो रही, यही भावना, बदल जाएंगे, ये मेरे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये ठीक हो जाएंगे, यही तो संपूर्ण बनेंगे, ये जग का कल्याण करेंगे, ऐसी सुंदर भावना। तो हम अपने अंदर निष्काम भाव धारण करें, बहुत दिव्यता आएगी, बहुत आंतरिक सुख मिलेगा हमें, और पक्का कर दें कितनों को हमने सुख दिया, वो दूसरों को दिया जाने वाला सुख हमें क्या देगा, सुख का भंडार बनाएगा, हमारी शक्तियों को बढ़ाएगा, दूसरों की हमें दुआएं मिलेंगी, हमारा मार्ग सरल होगा। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है, बद्दुआएं, और पवित्र आत्माओं की बद्दुआएं क्या करेंगी, आम आदमी की बद्दुआएं तो चल सकती हैं, पर योगियों की बद्दुआएं, इसको शास्त्रों में श्राप कह दिया है, बद्दुआएं जो नष्ट कर डालती हैं। आप भी देखते होंगे, हमने तो साक्षी होकर देखा, लंबा काल ऐसी आत्माओं को देखा जिन्होंने दूसरों की बद्दुआएं कमाई, दुर्गति हो गई, बहुत बहुत दुर्गति हुई उनकी, मृत्यु का भी उन्हें इंतजार करना पड़ा, तड़फते रहे, दूसरे लोग साथ भी दे रहे थे, उन्हें लगता था मेरा साथी कोई नहीं, बाबा भी साथ दे रहा था पर लगता था बाबा भी साथ नहीं देता, क्योंकि आत्मा ऐसी निरस हो जाती है। इसलिए हमें बाबा की इस बात को साकार रूप देना है, सुखदायी बोल से, व्यवहार से, कर्म से। माताएं सभी इकट्ठी रहती हैं यहाँ, एक एक कमरे में कितने कितने रहती हैं माताएं, 20-25, 15-20, कष्ट तो होता होगा रहने में, होता है कष्ट तो होता है थोड़ा बहुत, पर मुझे एक बात याद आ गई, एक बार टीचर्स का यहाँ प्रोग्राम था, तो 8-10 टीचर बहने लेक्चरर यहाँ आंगन में खड़ी, दादी दादी बाहर आई, वो दादी को ऐसे ही मिल रही, वो नई थी, परिचय ज्यादा दादी का भी नहीं था, बताया दादी है, मिल रही। दादी ने उन्हें कहा, भाई आप अपने अपने घरों में तो अकेले अकेले रहते हैं, हमने आपको एक एक कमरे में इकट्ठा रख दिया है, आपको कष्ट तो होता होगा। उसमें एक लेक्चरर बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा, नहीं दादी, हम तो अलग अलग थे, आपने हमें मिला दिया। अब मैं भी सुन रहा था, कितना अच्छा लगा, देखो ये विचार है ना, हम अलग अलग थे, आपने हमें मिला दिया। तो संगठन में एक साथ रहने में कष्ट तो होता है, दिक्कत होता है, नहाने धोने में भी होता है, कोई माता देर लगाती है नहाने में, बाथरूम से निकलती नहीं, कपड़े बाल्टी में भर के रख देती है, तो माताओं को कष्ट तो होता है। हमारे वहां शांतिवन में जहाँ मेरा कमरा है, तो उसके थोड़ा ही आगे दूर, जैसे यहाँ से गए हमारा ये बीच का ऑफिस दादी का, ऐसे में माताओं के रूम है, तो मैं जब चाहे उठ के बाहर निकलूं सवेरे 3 बजे 3:30 4, तो वहां से माताओं के लड़ने की आवाज आती रहती है हमेशा ही। मैं 3 बजे भी उठा, उससे पहले क्या दरवाजा खटखटाया जा, निकल बाहर, जल्दी निकल, कब से तुम नहा रही है, पानी कम है, कितना अनाउंस किया है पानी कम है, फिर भी 4 बाल्टी से नहा रही हो, तो ये कष्ट तो होता है, लेकिन महान कौन। ध्यान दें एक बात पर, जो दूसरों का भी ध्यान रखे, जो केवल अपना ध्यान रखते हैं वो क्या हो गए, स्वार्थी, फिर उनका ध्यान कोई नहीं रखता, जो अपना ध्यान रखेंगे केवल उनका ध्यान कोई नहीं रखेगा। ये जन्म जन्म के संस्कार हम अपने अंदर भर रहे हैं, इसलिए जिनको राजा बनना हो क्या करेंगे, दूसरों का ध्यान रखेंगे, जो राजा दूसरों का ध्यान नहीं रखते, जैसे आजकल के राजा हैं, तो उनकी राजाई चली जाती है। कोई एमएलए भी अच्छा काम ना करे, अगली बार लोग सोचते इसको हराना है, अब बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा, सारा माल हजम कर गया है। तो जो धन भी केवल अपने लिए खर्च कर लेते हैं, दूसरों के लिए सुखदायी नहीं रहते, उनकी सत्ता चली जाती है। ये अविनाशी नियम है संसार का। देर लग सकती है सत्ता जाने में, पर सत्ता जाती है अवश्य। इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, राजवंश स्थापित हुए, कोई ऐसा शासक आया उसी वंश में जिसने प्रजा को कष्ट देना शुरू किया, धन संपत्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया, अपने विषय विलास में सब धन लगा दिया, वहीं से उनका वंश नष्ट हो गया। किसी ने भी अटैक किया, उनके राज्य को नष्ट कर दिया, दूसरे आए। मुगल मुस्लिम शासन में भारत में 1192 से मुस्लिम शासन भारत में शुरू हुआ और अंग्रेजों के आने तक चला। कितने ही वंश आए, किसी की 4 पीढ़ी चली, किसी की 5। मुगल वंश वहां से नष्ट होने लगा जब से औरंगजेब आया, चौथा पांचवा शासक था, छठा शायद पांचवा। उसने अत्याचार रखे, हिंदुओं को सताया, बस उसके बाद नष्ट होने लगा, राजाए स्वतंत्र होने लगे, नष्ट हो गया। तो जिनको राज संभालने का संस्कार भरना है, जन्म जन्म राज्य मिल सकेगा, वो जैसे राजा प्रजा पालक होता है, हम भी दूसरों के लिए सुखदाई बने, सुखदाई। ऐसा संकल्प कर दे, हमारे पास जो कुछ है जब तक वो दूसरों को सुख देने में काम नहीं आया, वो निरर्थक है। धन भी है ना, हमने अपने धन से दूसरों को सुख नहीं दिया तो धन हमें सुख नहीं देगा। हमारे पास बुद्धि है, सुख दें। हमारे पास शक्ति है, परिवार में बच्चे बहुत अच्छे हैं, सुखदायी बन जाए, हर चीज बढ़ती जाएगी, सुख प्राप्त होता जाएगा। तीसरी बात थी, स्वयं कितने शक्तिशाली बनकर रहे। बहुत सुंदर बात है, हमें शक्तिशाली बनाता है बाबा। अपनी शक्तियां दे दी हैं उसने हमें। किन किन चीजों में हमें शक्तिशाली बनना है? पहले बोलो, सबको, सबके लिए है वो, सबको अनुभव है उसके। किसमें? परिस्थितियों के सामने शक्तिशाली। दूसरा भाई बोलो, कर्म भोग के सामने शक्तिशाली। तीसरा माया। तीन ही चीज है बस, या तो मनुष्य को शारीरिक बीमारियां बहुत हिला डालती हैं, कईयों को बाबा से भी दूर ले जाती हैं। शारीरिक बीमारियों में शक्तिशाली बनकर रहना। कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, अब आप उन लोगों की कल्पना करो कि कुमार है, बूढ़ा हो गया है, बीमार भी है, अब वो अकेला है। ये कई कुमारों के सामने समस्या आ रही है, बेचारे 40 साल से ज्ञान में है, 45 साल से ज्ञान में है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, भोजन भी हाथ से बनाना है, अब परिवार उनके जो भाई आदि थे वो अपने परिवारों में हैं, वो अब अकेले हैं। तो शक्तिशाली कहीं कहीं नहीं रहते, निर्बल फील करते हैं अपने को, सोचते हैं हम अकेले रह गए दुनिया में, अब और हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा हमारा। स्थिति बिगड़ रही है, बीमारियां आ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, धन का भी अभाव हो सकता है, अकेला मनुष्य क्या क्या करेगा। ऐसे में शक्तिशाली बनकर रहना है, जो बुजुर्ग माताएं बैठी है सोचो, शक्तिशाली बनकर रहना। कई माताओं के सामने समस्या आ गई, माता बहुत स्ट्रिक्ट थी, कोई मेरे भोजन को छू नहीं सकता, अगर छू भी दिया तो खाएंगी नहीं, पानी भी किसी का नहीं पिएंगी, किसी के हाथ का पानी भी किसी रिश्तेदारी में जाती अपनी बोतल लेके जाती, सब नाराज, बड़ी कट्टरवादी है, अब हो गई बूढ़ी, खाना बनता नहीं, अब क्या करे। मेरे को फोन आते हैं, क्या करूं मैं कहता हूं वही करो जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को करना चाहिए, पहले से ही किसी से बिगाड़ना नहीं है। कई कट्टरता पूर्वक सबसे बिगाड़ लेते हैं नाता। तुम अज्ञानी हो, हम ज्ञानी हैं। कई तो सीधा कह देते तुम पतित हो, छूना नहीं है, मेरे बिस्तर पे बैठ गए, लड़ाई शुरू। तो क्या होता है, बिगड़ जाते हैं संबंध। ऐसे ऐसे केस हो गए कि परिवार वालों ने प्रतिज्ञा की हुई है जीवन भर ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाएंगे, ऐसा सिखाते हैं वो केवल खान पान की धारणाओं से। पानी भी नहीं पीना है कहीं, तुम पतित हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं, सीधा कह भी देते हैं। तो ये नहीं, अगर उनका पानी पतित हो सकता है तो क्या वो हमारे हाथ में आके पावन नहीं होगा? क्या समझती है माताएं? क्या हम दृष्टि दे के संकल्प करें, योग की दृष्टि डालें, वो पावन नहीं हो जाएगा? इसलिए ऐसी कट्टरता की जरूरत नहीं है। हमें शक्तिशाली बनकर रहना है परिस्थितियों में, माया के सामने और कर्म भोग में। सबसे बड़ी परिस्थिति मनुष्य को कर्म भोग की आती है, एक बीमारियों के रूप में, दूसरा ये कर्म बंधन है। बहुतों का हाल हम देखते जा रहे हैं, और आजकल ये भी दिख रहा है कि बाबा का ज्ञान लेने वो लोग ज्यादा आ रहे हैं जो संसार में बहुत दुखी हो गए हैं। क्यों? ऐसा समझें ड्रामा है या बाबा ने कर दिया कुछ कि ये देवकुल की महान आत्माएं संसार में भटक गई हैं, मेरी ओर तो देख ही नहीं रही है, करो कुछ ताकि ये वापिस आए। अब इतने दुखी हो जाते हैं कि सिवाय बाबा के पास आने के कोई रास्ता नहीं रहता। कल एक माता का फोन आ रहा मुझे, बहुत दुखी हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, बेंगलोर की दिल्ली में बिजनेस करने आए, सब नष्ट हो गया, वापिस बेंगलोर चले गए, कुछ नहीं, करोड़पति, खाने को भी नहीं। अब फिर वापिस दिल्ली में किसने बुलाया तो ज्ञान में आ गए 2 मास से। तो ज्ञान में आए तो देखो, पहला अनुभव, 10,000 रूपये किराए पे मकान लिया, 2 लड़कियां 2, ये कहा हमारे पास पैसा देने को नहीं था, बहनों ने सिखाया बाबा को अर्पित कर दो, आप ही कुछ ना कुछ करेगा। बाबा को अर्पित किया, बाबा ये समस्या है, तो किसी ने फोन किया उनके फ्रेंड ने कि भाई कुछ है या नहीं तुम्हारे पास, का कुछ नहीं है, कि अच्छा किराया मैं दे देता हूँ, किराया दे दिया उसका। फिर मेरे से पूछ रही थी ये समस्या, ये समस्या। मैंने कहा जब तुम्हें एक बार अनुभव हो गया कि बाबा को समर्पित करने से वो सब मार्ग खोल देता है, तो अब सब कुछ समर्पित कर दो ना। मेरी लड़की IPS करना चाहती थी, पैसा ही नहीं है, अब क्या करूं, मेरी लड़की का भाग्य कैसा होगा, कितनी चिंता करता है मनुष्य। अगर समर्पित कर दें तो क्या बाबा वो सब नहीं कर देगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं? ये एक बहुत सुंदर विधि है कि समर्पित भाव से जीवन जिए। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। मैं एक छोटी सी बात लोगों को सिखाया करता हूँ भट्टियों में, सभी गृहस्थ में रहने वाले और जो कुमार सेवाधारी हैं वो इस पे ध्यान दें, जो कुछ भी आप लाएं घर में पहले बाबा के आगे रख दें। सब्जी भी लाए ना थैला भर के, बाबा का चित्र रखा है उसके आगे रख दें, तुमको समर्पित, अब तुम्हारी ओर से हम ब्रह्मा भोजन खाएंगे। पैसा है बाबा के आगे रख दो, स्थूल में कर दो, तुमको अर्पित, तुम्हारी ओर से अब हमारी पालना होगी। दूध भी घर में लो, बाबा के आगे रख दो, तुमको अर्पित, तुम्हारी ओर से हमारी पालना होगी। छोटा सा नियम बना दो, छोटी सी बात है, पानी पियो बाबा को अर्पित, तुम पिलाओ, बहुत आनंद आएगा। इस तरह हम बाबा से जुड़े रहेंगे सारा दिन, इस समर्पित भाव से हमें शक्तियां आ जाएंगी बहुत कुछ सामना करने की। तो ये एक बहुत बड़ा और सुंदर सब्जेक्ट है कि विभिन्न परिस्थितियों में हम शक्तिशाली बन कर रहे हैं ताकि हमारी स्थिति न बिगड़े, उसके कई तरीके हम अपनाएं। हल्का रहना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वमान से ये विश्वास रखना कि परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा, मेरे साथ कौन है, ये नशा। इस नशे से निश्चिंत रहना, भक्ति में भी कई लोग निश्चिंत रहे, सब जगह हर एरिया में भारत के हर तरफ ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने निश्चिंत जीवन दिया, कुछ भी नहीं उनके पास। आज अब खा लिया तो कल क्या खाएंगे ये पता नहीं, ये कपड़े हैं आगे कहाँ से आएंगे पता नहीं, पर निश्चिंत भगवान भरोसे जी रहे हैं। उनका केवल भरोसा था और हमारा तो प्रैक्टिकल में बाबा साथी है। इस अनुभव को बहुत बढ़ाना और निराश न होना, निगेटिव न होना, घबराना नहीं कि अब हम बूढ़े हो गए तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। नहीं, आत्मा थोड़े बूढ़ी हो गई है, आत्मा में अगर सुंदर संकल्प होंगे तो शरीर में भी बहुत ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी, और बाबा इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा कि किसी न किसी को निमित्त बनाएगा मदद कराने के लिए। ये पूर्ण विश्वास हो हमें, यहाँ विश्वास का सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए सभी ध्यान दें, माताएं ध्यान दें, घरों में जो भी समस्याएं आती हैं, समस्याएं तो हैं ही, कलयुग का एंड आ गया है, इसमें सब कुछ अच्छा ही मिलता रहे ये नहीं होगा। जिनको हमने बहुत कुछ दिया है वो हो सकता है हमारे लिए परीक्षा बनकर आ जाए। मुझे माताओं पे बड़ी दया आती है जब देखता हूँ जिन बच्चों के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया, अब वही उनके लिए पेपर बने हुए हैं, न वो हंस सकते न रो सकते, ऐसी स्थितियाँ। ऐसे में हमें शक्तिशाली बनकर रहना, हमने अपने कर्तव्य पूर्ण किए, बाकी उनका अपना भाग्य भी है ना। तो सभी बहुत शक्तिशाली बनकर रहे। माताओं को देख के मुझे एक कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है, सुना दो, कोई माता खराब न समझे, सच्ची घटना है दिल्ली की। एक माता पिता, उसको दो बच्चे, एक ज्ञान में है जो कुमार है, उसने मुझे सुनाई कि मेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ। उसके बड़े भाई की शादी हुई अब से 12 साल पहले, पत्नी आई, उसका लक्ष्य था ये जो मेरा पति है ये अपनी माँ से बिल्कुल नाता न रखे। उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग कराया, वशीकरण कराया और पति को ले गई बाहर जहाँ उसकी नौकरी थी। माँ से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखने दिया 11 साल, 11 साल बच्चा नहीं हुआ। ज्योतिषी के पास गई, बच्चा नहीं हो रहा है क्या है, सब कुछ देखा उसने और बताया, तुमने एक बच्चे को उसकी माँ से दूर किया है ना, और उसको क्या पता था कि ज्योतिषी ये भी जान लेगा, और उसको बताना पड़ा किया है, तो उसके परिणाम ये है कि तुम निसंतान रहोगी। अब उसकी आंख खुली, उसने भी एक माँ को निसंतान कर दिया ना जीते जी। उसका दूसरा भाई कुमार ज्ञान में यहाँ आता सेवम बहुत। तो देखिए ये पाप कर्म है, आजकल नारी बहुत कर रही है ये काम, तोड़ने का काम, जबकि नारी को क्या करना है, जोड़ना है। भगवान ने क्यों चुना माताओं को, जोड़ने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए कोई भी तोड़ने का काम न करे अपने स्वार्थवश। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित, वो सोचती है बस पति मेरा और किसी का नहीं, माँ बाप मर गए इसके आज से, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए सभी को बहुत समझदारी पूर्वक सुखदायी बनना है, कहीं अपने स्वार्थ का त्याग भी करना पड़े ना दूसरों को सुख देने के लिए तो कर देना चाहिए, कहीं कष्ट भी सहना पड़े सह लेना चाहिए, पर इसका पुण्य, इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं, तो बाबा भी हमसे राजी होगा, बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे और उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी, और जिसको भगवान साथ देगा विनाश काल में उसकी जीवन नैया, कितने भी तूफान होंगे ना सागर में, निश्चिंत निर्भयता पूर्वक अचल अडोल आगे बढ़ती रहेगी, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो इन तीन बातों पर सभी ध्यान देंगे, न दिखावे का महत्व है बाबा के पास, बाह्य चीजों का महत्व पृथ्वी नहीं है उसके पास, वो देखना चाहता है हमारी स्थिति। स्थिति क्या है, कौन कहाँ पहुंचे हैं, किसने मेरी पालना का कितना अपने जीवन को स्वरूप बनाया है। तो बहुत सुंदर समय आ रहा है, सुंदर विनाश का भी लेकिन सुंदर भी, जबकि हम सभी को संसार की पालना करनी होगी, उनके दुख हरने होंगे, उनको सकाश देनी होगी। अब सभी सोच लें, लास्ट बात फिर वही मैं कहूंगा, परसों मैंने अपने भाइयों को कहा यहाँ वालों को, अब हम सभी गहराई से चिंतन करें, हमें वो सब कुछ करना है जिसके लिए बाबा ने हमें ये जन्म दिया है। हमें वो सब कुछ करना है अब जिसके लिए बाबा ने हमें पाला है, प्यार दिया है, संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है, अपनी शक्तियां दी हैं। सभी गहन चिंतन करेंगे, हमें वो करना है जिसके लिए हम बाबा के पास आए हैं, ठीक है। वो नहीं करना है जो संसार के लोग कर रहे हैं, वो नहीं करना है जो ढीले ढाले ब्राह्मण कर रहे हैं, हमें वो करना है जो हम संसार को देने के योग्य बन जाएं। पसंद है, सभी चिंतन करेंगे बहुत अच्छा, और अंतर्मुखता के द्वारा अपने को योग्य बनाएंगे। 9:30 बज गए, पूछ लो फट से। ये बाबा देगा ना खाने को, सास नहीं देगी तो बाबा बैठा है ना, उस पे विश्वास रख के चलो।